संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंत सो पंत, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दूजो हैं रसखान। आपके सभी भक्तों संतों के चरणों में प्रणाम। राधे राधे। आज भक्तमाल श्रृंखला में चरित्र करते हैं श्री रघु जी का। रघुवंश की कीर्ति को सभी जानते हैं। भगवान श्री राम जी भी अपने आप को रघुवंशी कहने में कितना गौरव महसूस करते हैं, उन्हीं श्री रघु जी का चरित्र हम कहने जा रहे हैं। रघु जी धर्मपरायण, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय ऐसे शासक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जो धर्म का पूरी तरह से रस जानते थे, सार जानते थे कि धर्म का सार क्या है। पूरे धार्मिक राजा थे। भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, भगवान में पूर्ण निष्ठा थी। तो एक बार क्या हुआ, इनके यहाँ पे एक ब्राह्मण देवता आए, तो रघुजी राजमहल में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। रानियों को निवेदन किया, कुछ वो दक्षिणा के लिए आए हुए थे। तो अंदर जो द्वारपाल थे वो अंदर रानियों के पास गए कि ब्राह्मण देवता कुछ निवेदन करने आए। उन्होंने कहा राजमहल में बुला लाओ। अंदर राजमहल में गए तो उन्होंने राजा के सिंहासन पर उनको बिठाया, जिसपे सिंहासन पर राजा बैठते हैं, उन सिंहासन पर बिठाकर ब्राह्मण देवता की पूजा की। पूजा करने के बाद उनको खाने पीने के लिए उनकी सेवा करी और उसके बाद पूछा कि आपको क्या चाहिए। बोले रानियों वो तो बाद में बताऊंगा मैं क्या चाहिए, पहले ये बताओ कि महाराज ने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि जिसके प्रताप से उसको उनको ये वैभव प्राप्त है, ऐसी सुशील रानियाँ प्राप्त हैं जिनको देखे तो जी नहीं भरता है, ये सब कैसे प्राप्त है उनको। तो रानियों ने कहा पूर्वजन ने महाराज ने भगवान शिव को यज्ञ में सब कुछ समर्पित करते करते हुए अपना सर तक समर्पित कर दिया था, अपना अंग अंग समर्पित उन्होंने भगवान शिव को किया था, उसी का प्रताप यह है कि उनके पास इतना वैभव है। ब्राह्मण देवता बिना कुछ मांगे, बिना कुछ याचना किए वहाँ से निकल पड़े कि बस हमें भी काशी में जाके भगवान शिव को सब कुछ समर्पित कर देना है, ताकि ऐश्वर्य हो तो ऐसा हो रघु जी जैसा, अन्यथा ना हो। वहाँ से निकल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट हुई महाराज रघु जी से, वो भी आ रहे थे। वहाँ से रथ देखा, वो रुके, ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने देखा महाराज राज्य की तरफ से आ रहे हो और खाली हाथ, ऐसा कैसे। बोले महाराज क्या छोटी मोटी वस्तु क्या मांगे हम, अब हमने सुना है कि आपने पूर्व जन्म में इतना दान पुण्य किया है और सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया था भगवान शिव को, तो उसके प्रताप से आपको ये प्राप्त है, तो हम भी अपना सर्वस्व भगवान शिव को ही समर्पित करेंगे। तो बोले अरे महाराज इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है आपको, जो हमने दिया है हम आपको सहज ही दे देते हैं, हमारी रानियों में इतनी आसक्ति है आपकी, चलो रानियाँ भी दे देते हैं। बोले महाराज हम गरीब ब्राह्मण आपकी रानियों का खर्चा कैसे उठाएंगे। बोले अरे आप घबराइए मत, हम आपको अपना सारा राज्य दे देते हैं, चलिए आप। तो उन्होंने रथ पर बिठाया ब्राह्मण देवता को और राज्य में ले आए। संकल्प किया, संकल्प करके समस्त रानियाँ और समस्त राज्य ब्राह्मण देवता को समर्पित करके अपने अंग पे एक धोती डाल के और महाराज चले गए वन को। अच्छा, वन में उनके साथ में उनके जो मंत्रीगण, जो उनके विशेष मंत्री होते थे, वो भी महाराज के साथ वन में निकल लेते थे कुछ ऐसा हुआ तो। वो भी अभी एकांत में वन में अपनी तपस्या करने लग गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ के तप करते थे, जप करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। एक दिन एक घटना घटी कि एक ऊपर से एक दिव्य फल गिरा इनके हाथ में। हाथ में गिरा तो दो पक्षी थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये फल महाराज के लिए ही है और इसको जो भी खाएगा उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे, दिव्य और तरुण देह प्राप्त होगी। महाराज ने सोचा मैं तरुण और दिव्य देह लेके क्या करूँगा, वो बेचारा ब्राह्मण देवता है, बूढ़ा है, वैसे ही वो भोग नहीं भोग पा रहा होगा, क्यों ना ये फल चल कर उसे दे दूँ। तो महाराज वो फल लेकर के गए राजमहल में और उस ब्राह्मण को देते हुए कहा इस फल से जो भी तुम्हारे शरीर में रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे और तुम्हें एक तरुण देह प्राप्त होगी, यौवन देह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और दिव्य देह प्राप्त होगी। उसे लगा कि महाराज वन में रहते रहते ऊब गए हैं, अब इनका मन होगा वापस अपनी राज्य और रानी लेने का, तो इसलिए विष मिला के मुझे फल दे रहे हैं। तो बोला ठीक है महाराज, अब दे जाइए। महाराज यहाँ से गए, उसने वो फल बाहर फिंकवा दिया। बाहर जब वो फिंकवाया तो वहाँ राज कर्मचारियों ने देखा एक ऐसा असाध्य रोग से पीड़ित, एक क्षुधा पीड़ित भी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी और असाध्य रोग थे उस व्यक्ति को, सड़कों पर घूमता था। उसने वो फल उठाया और वो फल खा लिया। वो फल खाते ही वो तो उसके सारे रोग की निवृत्ति हुई और उसको दिव्य देह प्राप्त हुई, यौवन उसका दिखने लगा। ओह, तो ये बात जो राज कर्मचारी थे उन्होंने बताई ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे हम खा लेते वो फल। तो ये ढूंढते हुए फिर वन में पहुंचे। वन में इन्होंने रघुजी को देखा, रघुजी से पूछा कि भाई हमें वो फल चाहिए, वो दो। इन्होंने कहा हमें तो पक्षियों ने दिया था, अब कहाँ हमारे पास फल है, वो एक ही था। ये बोले कुछ भी कहो हमें फल चाहिए। उन्होंने मना किया, भाई नहीं है। ये बोले तो ठीक है, ये रही तलवार, हम अभी गर्दन काट लेंगे, ब्रह्महत्या का पाप लगेगा आपको, बोलो दे रहे हो कि नहीं फल। अब उनके सामने कोई ब्रह्महत्या करे ऐसा भी नहीं। उन्होंने उनको रोकने के लिए बोल दिया ठीक है हम देंगे ठीक है, आप ये मत करो, आप अपना हत्या मत करो। वो तो डरा रहे थे, कहाँ हत्या कर रहे थे, वो तुम राजमहल जाओ हम उसका कुछ करते हैं। इन्होंने प्रण कर लिया तो देना पड़ेगा, क्योंकि रघु जी के रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन नहीं जाएगा प्रण किया है तो। अब इन्हें लगा कि कैसे करें। तो जब शाम को वो पक्षी घोंसले में आए तो उन्होंने उनसे आवाज़ लगाई, पूछा कि वो फल कहाँ से आया था। उन्होंने कहा वो फल हम इंद्र सभा से लेके आए थे। ये तपोबल से इंद्र सभा में पहुँचे, इंद्र से कहा कि वो फल कहाँ से मिला था आपको, हमें वो फल चाहिए। उन्होंने कहा वो फल तो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था आपको पहुँचाने के लिए, और वो पक्षियों को मैंने ही भेजा था आप तक पहुँचाने के लिए, ब्रह्मा जी ने दिया था। ये तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कर निवेदन किया फल। उन्होंने कहा ये फल हमें भगवान नारायण ने दिया था आपको देने के लिए, हमारे पास एक ही था भगवान नारायण। ये वापस आए, फिर इन्होंने भगवान का ध्यान लगाया, भगवान की आराधना की और भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट हुए, भगवान से इन्होंने कहा हाथ जोड़ के भगवान एक फल चाहिए। भगवान प्रकट हों और वो एक फल मांगे। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए तो हमने वैकुंठ में फलों के बाग लगे हुए हैं, तुम जाओ चलो वैकुंठ सारा दे देते हो महाराज, हमें तो इच्छा नहीं है, वो बेचारे ब्राह्मण देवता को फल चाहिए, उन्हें ही वैकुंठ क्यों ना दे दें आप। तो भगवान द्रुविभूत हो गए, हालत कि इनको प्रेम से उन्होंने अपने गले लगाया, सीने से लगाया भगवान ने, आलिंगन किया और इनसे कहा कि धन्य हो तुम, कितने त्यागी हो तुम, सारा का सारा त्याग दूसरों को दे देते हो तुम। तो भगवान ने इनसे कहा कि ठीक है तुम अपना राज्य संभालो, हम ब्राह्मण देवता को बैकुंठ लेके चलते हैं। तो फिर से भगवान ने राज्य इनको दिलवा दिया और ब्राह्मण को ले गए भगवान बैकुंठ। एक बार रावण के मन में भी, बड़े ही दिन से उनके मन में ही था कि रघु जो हैं बहुत ही प्रतापी राजा हैं और उनका ऐश्वर्य भी देखना चाहिए। उनके मन में, रावण के मन में खोट भी था रानियों के प्रति। तो एक दिन वो राज दरबार में पहुंचा, संध्या का समय था, संध्या के समय ये तो अपने संध्या भवन में थे जहाँ संध्या कर रहे थे। वो राजमहल में गया तो रानियों को लगा कोई ब्राह्मण आया, ब्राह्मण वेश में था रावण, तो उन्होंने वही महाराज के राज सिंहासन पर बैठा देती थी तो ब्राह्मणों की पूजा करते थे, बैठाया उसको। बैठाते ही क्योंकि वो जो दिव्य सिंहासन था उनका, सत्यवक्ता थे वो, वहाँ पे झूठ चलता नहीं था, तो उसका बैठते ही छल प्रकट हो गया, वो छल की जो माया थी वो खत्म हुई, उसको दशानन प्रकट हो गया असली रावण रूप में। वो छिप गई रानियाँ दशानन को देख के, वो किसी दूसरे पुरुष के सामने थोड़ा आती थी। ये लज्जित हो गया कि मेरा तो भेद खुल गया इनके सामने। वो यहाँ से सिंहासन से उतरा तो उसने फिर छल से अपना वेश बदला ब्राह्मण का और वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पर संध्या कर रहे थे रघु जी। संध्या करते हुए बीच में उन्होंने संध्या पात्र उठाया जल का और कुशा ली और अभिमंत्रित की और गुस्से में कुशा का एक तिनका उन्होंने अभिमंत्रित करके फेंक दिया। फिर उन्होंने अपनी पूरी जो है संध्या कंप्लीट करी। पूरा होने के बाद में जब रावण ब्राह्मण वेश में था ही, उसने संध्या के बाद प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आपने बीच में वो क्या किया था। इन्होंने कहा कि जंगल में एक शेर ने गाय को पकड़ा था तो गाय ने पुकार करी कि मेरी रक्षा करो, इस राज्य का राजा होने के निमित्त मेरा अधिकार बनता है कि भाई मैं उसकी रक्षा करूं, तो इसलिए मैंने उसको अभिमंत्रित कुशा फेंका था, वो शेर मर गया, गाय बच गई। उसे लगा क्या ये डींग हाँक रहे हैं, यहाँ से एक कुश फेंक दिया और शेर मर गया, ऐसा भी कहीं होता है। उसको यकीन नहीं होता, वो जाके जंगल में पहुँचा, जंगल में जाके उसने देखा उसे सही में वो वहाँ पे वो चिन्ह दिखाई दिए, शेर मरा पड़ा है, गाय के पकड़ने के चिन्ह थे और कुश का बाण बना हुआ था। तो ये देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बाण से मरा है, उन्होंने कुश फेंका था, बात सही थी। ये बात रावण ने वापस आके मंदोदरी को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ आज, मैं ऐसे ऐसे गया था। मंदोदरी बोली कि तुम एक तो तुमने बहुत बड़ी गलती करी कि उनके राज्य में गए और उनके सिंहासन पर बैठ गए तुम, और रानियों को भेद पता चल गया, अगर राजा को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम संकट में हो, अभी तुम अपनी प्राण रक्षा के लिए और हमारी सबकी रक्षा के लिए अभी से प्रार्थना कर लो रघु जी से। तो बोला हम लंकेश हैं, हम ये है वो है, उन्होंने कहा हम थोड़ा ही किसी से डरते हैं, वो रघु है तो हम भी रावण हैं, उन्होंने भी डींग मारी। लेकिन जब वो अपने राजमहल पहुँचे उधर रघु जी को किसी रानी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके दशानन यहाँ आया था रावण। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्होंने देखा कि हाँ ब्राह्मण वेश में भी हमारे पास आया था, और उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे राजमहल में वो रानियों के पास पहुँच गया। तो वो बड़े उनको क्रोध आया तो उन्होंने बोला कि लो मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। उन्होंने अभिमंत्रित बोला, उसने कुश का प्रभाव देखा है मेरा, अभिमंत्रित कुश का और प्रभाव देख, उन्होंने अभिमंत्रित कुश लिया और अभिमंत्रित किया और कुश को फेंक दिया लंका की तरफ। तो लंका में प्रलय आ गई, ये मानो त्राहिमाम हो गया, अग्नि जलने लगी लंका उससे। तो उसकी हालत देख करके लंका की रावण भी घबरा गया कि कैसे बचें अब। जो मंदोदरी जानती थी कि उनका प्रभाव है, तो वो जो कुशा की जो अग्नि थी, मंदोदरी जी ने प्रणाम किया, राहु जी को वास्ता दिया भगवान का कि हम भी उसी भगवान के भक्त हैं और आपको शपथ है अपने प्रभु की, हे कुशा तू शांत हो, अगर हम भी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वो भी मंदोदरी भी सत्यवक्ता थी और भगवान की भक्त थी, उन्होंने वो रघु जी का प्रभाव जानती थी। उसने माथा टेक के प्रणाम किया, रघु जी के चरणों में अक्षमा प्रार्थना करी, तो वो सब शांत हुआ। ये प्रभाव देखकर रावण बड़ा प्रभावित हुआ और वो समझ गया कि भाई रघु जी से तो दूर रहना है। ये प्रभाव रघु जी का था। अभी एक बार का और प्रसंग है कि रघु जी के यहाँ पर वो क्या करते थे कि जो भी उनके यहाँ दरबार में आता था, कुछ भी मांगता था, सब कुछ देते थे। तो जब भी संध्या करके उठते थे, वो अपना पूजा अर्चना करके उठते थे, जो भी मांगे उसको वो दे दिया करते थे। तो धनाध्यक्ष कुबेर जी भी एक बार लाइन में लगे हुए थे, तो वो क्या मांगने के लिए, वो खुद धन के अध्यक्ष हैं कुबेर जी, वो भी लाइन में हैं, तो वो क्या मांगने के लिए कि इनके पास पुष्पक विमान था रघु जी के पास, इन्होंने वो पुष्पक विमान मांग लिया, उनसे मांगा तो ये लेके इन्होंने दे दिया, अपना ले जाओ भाई, ले गए। कुछ दिनों के बाद जब रावण का आतंक बढ़ा तो उसे पता चला कि पुष्पक विमान रघु जी ने कुबेर को दे दिया है, तो इन्होंने कुबेर पे आक्रमण करके वो छीन लिया। तो कुबेर जी रघु जी के पास आए कि जी पुष्पक विमान छीन लिया हमारा ऐसे ऐसे रावण ने, रावण पहले भी आ चुका था, तो इन्होंने फिर क्रोध आया, इन्हें बोला आज उसका काम ही खत्म कर देते हैं। इन्होंने 10 बाण निकाले, संधान किया 10 बाणों का, और कि हम रावण को आज ही खत्म कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा महाराज ऐसा मत कीजिए, हमारी सृष्टि का नियम है, उसके हिसाब से हमने भगवान श्री राम जी के हाथों उसका वध लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो भगवान श्री राम जी भी चाहते थे कि उन्हीं के हाथों भगवान नारायण वो जय और विजय का वध के लिए भगवान राम अवतार हुआ है, आपको पता है पहले वराह अवतार और नरसिंह अवतार हुआ, फिर रामा अवतार हुआ, फिर कृष्णा अवतार हुआ, उन्हीं 3 जन्म लिए तो सब बिगड़ जाएगा मामला, ब्रह्मा जी ने कहा। तो रघु जी बोले अब क्या करें, मैं तो प्रण ले चुका हूँ, इन्हीं 10 से उसका वध होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये 10 बाण आप रख दीजिए, इन्हीं 10 से होगा पर भगवान श्री राम करेंगे, यही बाण लेकर जाएंगे, तो उन्हीं बाणों से भगवान श्री राम जी ने उसका वध किया था। एक प्रसंग और आता है इसमें रघु जी के चरित्र में कि एक बार कोत्स मुनि थे, वो अपने गुरु के पास विद्या ग्रहण, वर्तंतु के पास उन्होंने विद्या ग्रहण करी और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरु दक्षिणा जो आप कहें मैं देने को, तो ये बोले अरे क्या गुरु दक्षिणा दोगे, ठीक है मेरी शिक्षा जो दी है इसका सदुपयोग करना। बोले नहीं महाराज कुछ तो मांगो। उसके मन में भी अभिमान आ गया, मेरे से 14 विद्याएं सीखी, ठीक है 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्राएं दो। अब उसके पास कहाँ, कौत्स मुनि के पास में क्या था बेचारे के पास में, वो तो एक लंगोटी उसके पास थी, कोपिन थी बस। लेकिन उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अयोध्या जी चलूं, रघु जी देंगे सब। और रघु जी तब एक यज्ञ करके ब्राह्मणों को सब कुछ दान करके अपना वो जंगल में निवास कर रहे थे और मिट्टी के मृत्तिका पात्रों में वो खा रहे थे, जो भी पी रहे थे। उन्होंने जाके कोत्स मुनु ने वहाँ प्रणाम किया, देखा अरे यहाँ तो ये सब कुछ बदल गया है, और उन्होंने संकोच के मारे उनसे कुछ याचना नहीं करी, पर ये समझ गए कि ये किसी याचना के लिए आए हैं। उन्होंने पूछा मुनि बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा महाराज, अब बोले नहीं नहीं बताइए आप क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ चाहिए। तो दशरथ जी ने अपने जो मंत्रिमंडल था उनसे विचार विमर्श किया और कहा कि वरुण जो धनाध्यक्ष हैं कुबेर जी, उन पे आक्रमण कर देना चाहिए। आक्रमण की तैयारी हो गई। कुबेर जी को पता चला तो स्वतः ही वो आ गए और सारा धन की वहाँ पे वर्षा कर दी। महाराज जितना चाहिए आपसे कौन लड़े महाराज। तो उन्होंने उस सामने उसके रख दिया कौत्स मुनि के। वो भी ब्रह्मचारी था और अपने वचन का पक्का था। सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ लेकर वो वहाँ से चला गया और इनको आशीर्वाद दिया कि आपके यहाँ खजाने भरे रहें धन के, और आपके यहाँ पे ऐसे पुत्र हों जिनकी कीर्ति सदा जग में रहे। तो आशीर्वाद देखकर वो चले गए। तो ऐसे हमारे आज के चरित्र नायक श्री रघु जी हुए हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान सदैव प्रसन्न रहते थे। ऐसे भगवान के भक्त को प्रणाम है, श्री हरि को प्रणाम है, श्री भक्तमाल को प्रणाम है, भक्तमाल के सभी संतों को प्रणाम है और सुनने वाले सभी भक्तों को प्रणाम है। श्री राधे राधे, विराम करते हैं। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।